के भर भाल पर, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।
ओम शांति। साधना का 12वां दिन। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मल का। एक खेह है शेष किसी विद पार, उसे कर जाओ वह देखो उस पार चमकता मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में, अग्नि के अक्षरों में लिखा है इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर धन बन छाएगा ही उच्छास तुम्हारा। और अधिक ले जाच देवता इतना क्रूर नहीं, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल इतनी दूर नहीं। हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो थक कर नहीं बैठ जाना है, अपनी हड्डी की मशाल से क्या करना है, हृदय चीरना है तम का, अंधकार का। सारी रात चले तुम, सारी रात भर चले हो, दुख झेलते कुलिश निर्मल का। एक खेय है शेष किसी विद पार, कर उसे जाओ। खेय है शेष, खोदना थोड़ा बाकी है, तुम्हारे पास एक कुलिश है, एक शस्त्र है निर्मल का। उस शस्त्र से, उस हल से जैसे इस खेत को जोत डालो। किसी विद पार कर उसे जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। बस थोड़ा ही तो बाकी है। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं, यहां तक आके वापस लौट जा रहे हो। आप पूरा जोर लगा दो, थक कर बैठ गए क्यों भाई, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर। दिशा प्रकाशित हो उठी है, अब उन्हें प्राप्त कर। पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका है अनल अक्षरों में, तुम्हारा पुण्य प्रकाश किसमें लिखा है? अग्नि के अक्षरों में, अग्नि के अक्षरों में लिखा हुआ देखना, यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। आकाश में देखना है, अग्नि के अक्षरों में लिखा हुआ है तुम विजयी हो। रुको नहीं, थोड़ा बाकी है। मंदिर प्रियतम का बस दिख रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लिखा जा चुका है अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। तुम्हारा इतिहास तो पहले ही लिखा जा चुका है, तुम्हें तो बस करना है, बस लिखा तो पहले ही जा चुका है। बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं तुम्हारा इतिहास। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर धन बन छाएगा ही, उच्छ्वास तुम्हारा और अधिक, अधिक अर्थात अधिक, और अधिक ले जाच देवता इतना क्रूर नहीं, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल इतनी दूर नहीं। तो आज तपस्या का 12वां दिन, अव्यक्त वाणी, 3 मार्च 1984 अव्यक्त महावाक्य। अपने आप से एवर रेडी हो, समय को छोड़ो, समय नहीं गिनती करो, अभी यह होना है, अभी यह होना है, वह समय जाने बाप जाने, सेवा जाने बाप जाने। स्व की सेवा से संतुष्ट हो, विश्व सेवा को किनारे रखो, स्व को देखो। क्या करो? स्व, निज, निज को देखो, स्व को देखो, स्व को देखो, खुद को देखो, स्व की स्थिति में, स्व के स्वतंत्र राज्य में स्वयं से संतुष्ट हो। हो, हो, हो? नहीं होना चाहिए। निरंतर एक बेचैनी रहनी चाहिए, वो वाली बेचैनी जो संसार के लोगों को रहती है, वो नहीं, वो वाली असंतुष्टता नहीं जो संसार के लोगों को रहती है, और चाहिए और चाहिए, वो नहीं। इसको कहते हैं द डिवाइन डिस्कंटेंट, एक दैवी असंतोष। इसको क्या कहते हैं? द डिवाइन डिस्कंटेंट, एक दैवी असंतोष है। अंग्रेजी के महान कवि ने एक जगह लिखा है, आई स्लीप नॉट, मैं सो नहीं रहा हूं, द थॉर्न इन माई कोच, मेरे बिस्तर में क्या है, काटा है। कैसे सोऊं? आई स्लीप नॉट, द थॉर्न इन माई कोच। लॉर्ड बायरन, बायरन नाम का कवि था, उसने लिखा, आई स्लीप नॉट द थॉर्न इन माई कोच, ईच डे अ ट्रम्पेट साउंडेथ इन माई ईयर, इट्स एको इन माई हार्ट। हर दिन जैसे एक ध्वनि कानों में गूंजती रहती है, और उसकी प्रतिध्वनि मेरे हृदय में है। मैं कैसे सोऊं? बेचैनी है, कैसे सोऊं? क्योंकि कुछ करना है, जो करना है वो किया नहीं है अब तक। कुछ क्रांति लानी है, स्वयं में, देश में, सब जगह। तो स्वयं से संतुष्ट हो, स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, स्वयं के स्वतंत्र राज्य से संतुष्ट हो। ऊपर ऊपर से हाँ, परंतु अंदर से एक दैवी असंतोष निरंतर होना चाहिए, क्योंकि ये दैवी असंतोष ही वो फोर्स है जो आगे बढ़ाएगा कि नहीं नहीं, अभी और करना बाकी है, और अध्यात्म की तो परिभाषा ही यही है, और। संसार के लोग भी और करते रहते हैं, पर वो दुख के कारण करते रहते हैं। संसार के लोग भी दुखी है, जैसे संसार में भक्ति में भगत भी बहुत दुखी रहता है, सबसे ज्यादा दुखी भगत रहता है, पर उसका जो दुख है वो संसार के दुखों जैसा नहीं है। मीरा सबसे ज्यादा दुखी है, पर उसका जो दुख है वो अलग प्रकार का दुख है। वो भी रो रही है, पर उसके आंसू और संसार के लोगों के आंसुओं की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि उसके आंसू तो प्रभु मिलन के आंसू है। वो उसको पुकार रही है जो मिला नहीं है। इसीलिए यहां पर भी क्या रहना चाहिए अंदर? डिवाइन डिस्कंटेंट, कि ये नहीं, और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए। स्व की स्थिति में, स्व के स्वतंत्र राज्य में स्वयं से संतुष्ट हो, स्व की राजधानी ठीक चला सकते हो। यह सभी कर्मचारी, मंत्री, महामंत्री, सभी आपके अधिकार में है, कहा अधीनता तो नहीं? कभी आपके ही मंत्री महामंत्री धोखा तो नहीं देते? किसी पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करना, महाठग है एक एक, एक एक बहुत धोखेबाज है। कहीं अंदर ही अंदर गुप्त अपने ही कर्मचारी माया के साथी तो नहीं बन जाते? इधर की बातें उधर, और हम हर गए। बड़े बड़े राज्य जो गिरे किसके वजह से गिरे? भारत में प्रवेश तो कैसी होगी अंग्रेज लोग की? सिकंदर भारत में कैसे आ पहुंचा था? क्यों आ पहुंचा था? हाँ भी मिल गया था उसके साथ। प्लासी का युद्ध हम क्यों हारे थे? क्यों हारे थे? निजामुद्दीन सिराजुद्दौला क्यों हारे थे? मीर जाफर, टीपू सुल्तान क्यों हार गया था? साथ ही उसका दगाबाज निकला। जो भी भारत में ऐसे ऐसे जो लोग आए हैं, मोहम्मद गजनवी क्यों जीत गया था? ये सारे लोग हमारे ही अंदर से किसी ना किसी ने दगा दिया था, इसीलिए सभी। तो यहां पर भी ऐसा ही है, हमारा स्वतंत्र राज्य है। इस राज्य का अगर कोई मंत्री, कोई महामंत्री, कोई कर्मचारी यदि धोखा दे दे तो गए। सो के राज्य में आप राजाओं की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर यथार्थ रूप से कार्य कर रही है। ऐसा तो नहीं कि ऑर्डर करो, शुभ संकल्प में चलना है और चले व्यर्थ। कल हमने देखा था, एक शब्द ले लेना उसकी गहराई में जाना, एक वाक्य ले लेना उसकी गहराई में जाना, एक शब्द ले लेना एक वाक्य, उसके भाव को समझना, उसके गूढ़ार्थ को समझना, अपनी कमजोरी उठा लेना और उस पर बैठकर बस उस एक कमजोरी पर चिंतन करना। तो कल एक काम दिया था भोजन वाला, कौन सा था वो? एक हफ्ते में कुछ भी जो तेल में डुबोया गया है, एक है विषय सागर नदी, विषय सागर, विषय वैतरणी नदी, एक है तेल वैतरणी नदी। एक है शोक वाटिका, एक है अशोक वाटिका, और ब्राह्मण है छोक वाटिका में। क्या कर रहे हैं? हर चीज को छोक लगा रहे हैं। चावल बना है पर क्या करना है उसको? छोक लगाओ, छोक लगा रहे, हर चीज को छोक लगा रहे, छोक वाटिका ही में बैठे हैं। उधर सीता बैठी है शोक वाटिका में, और भगवान हमको ले जा रहे अशोक वाटिका में, और हम फंसे हैं छोक वाटिका में और तेल वैतरणी नदी में। तो एक हफ्ता क्या पुरुषार्थ है? सोमवार से संडे तक तेल में तला हुआ कुछ भी लेना नहीं है। इससे कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर एकदम बढ़ जाएगी, और जिस दिन ये कहा उसी दिन सामने कुछ आएगा। आता है हर दिन ही आता है, पर उस दिन विशेष रूप से आएगा और लगेगा थोड़ा सा खा लू बस। एक से क्या होता है? अरे एक तो खा लू, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या मेरा पुरुषार्थ और ब्रह्मचर्य और मेरी तपस्या भंग हो जाएगी? एक चिप्स खा लूंगा, एक चिप्स का टुकड़ा, टुकड़े का संबंध नहीं है, संबंध है संकल्प का। खाने पीने से तो कोई लेना देना ही नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ भी लो तो क्या स्वास्थ्य थोड़ी ना बिगड़ने वाला, इतना सा खाए तो कुछ नहीं होगा। बात भोजन की है ही नहीं, भोजन की वस्तुओं की बात ही नहीं है। यहां काम जो कर रहे हैं वो अवचेतन मन पर काम किया जा रहा है, आदतों पर काम किया जा रहा है, आदतों पर कुठाराघात हो रहा है। बाकी किसी स्थूल वस्तु से हमें क्या लेना देना, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है उससे। ऐसे तो कई लोग है वो कहते हैं मैंने कभी चिप्स खाए नहीं तो महान योगी बन गया। नहीं, उसका संबंध ही नहीं है, संबंध किसी और चीज का है। तो पहला पुरुषार्थ कल का ये था, और दोपहर का पुरुषार्थ क्या था कल का? केवल दोपहर का अनाज नहीं तो क्या खाया सबने? बताएंगे अपना अपना। फ्रूट्स खाए और क्या खाए? सलाद खाए और क्या खाए? गाजर खाया और क्या खाया? सब्जी खाई, आलू, वाह। और क्या खाया? फ्रूट खाया ना बस। तो ये जो जीत है ये हमारी आंतरिक जीत है, इसका कोई दिखावा नहीं है, इसका कोई किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। हम ये खा रहे वो खा रहे, खाने से क्या संबंध? यहाँ सारा खेल चल रहा है इधर रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर पर। ऑर्डर करो सहनशीलता के गुण को और आवे हलचल का अवगुण, सभी शक्तियां सभी गुण। हे स्वराजे, आपके ऑर्डर में है। भगवान देखो कैसे पूछ रहा है, आपके ऑर्डर में है। क्या कह रहा है? हे स्वराजे, कितना अच्छा नाम है। हे स्वराजे, राजे बेटा, राजा बेटा, यही तो आपके राज्य के साथ ही है, तो सभी ऑर्डर में है। जैसे राजा लोग ऑर्डर करते हैं और सभी सेकंड में जो हुजूर कर सलाम करते हैं, ऐसे कंट्रोलिंग रूलिंग पावर है। हम कहे हाथ को तो हाथ कहे, सलाम करे हमको हाथ पैर। तो आज ऐसी हम 10 चीजें देखेंगे जिनको हमको वश में करना है। जंगली हो गए, जंगली को क्या करना है, उसको अपने वश में कर देना है, पालतू बनाना है उसको। एक जंगली हाथी कितना नुकसान कर देता है, कितनों को मार देगा। अगर वही हाथी पालतू बन जाए तो कितना काम करेगा, आधे काम तो वही कर देगा सारे। इसमें रेडी हो, स्व की कमजोरी स्व का बंधन धोखा तो नहीं देगा। सिकंदर भारत आया, लूटपाट की, बहुत जीता और फिर आगे नहीं बढ़ पाया। जाने का समय आया और फिर जाते समय उसने सोचा कि मैंने सुना है भारत के जो सन्यासी, उसका सन्यासियों के लिए बहुत रिस्पेक्ट था। उसके मन में विचार आया कि यहाँ के किसी एक सन्यासी को मैं यूनान लेके जाऊंगा। उसने कहा जाओ देखो कोई सन्यासी है, पकड़ के लेके आओ, हम उसको साथ में लेके जाएंगे। वो गए, एक सन्यासी बैठा था, दांडियावन उसका नाम था। ऐसे तो कई सन्यासियों से वो मिला है भारत में, पर ये एक जो सन्यासी था, सिपाही आए कहे चलो, वो कहे कहाँ। उसने कहा सिकंदर महान ने पुकारा है, बुलाया है तुमको। कहते मैं नहीं आऊंगा। अरे सिकंदर जिससे सारी दुनिया डरती है, वो तुमको खास बुला रहा है, मैं नहीं आने वाला। सिपाही जाके बताते ऐसे कैसे नहीं आएगा, वो तो उसको जरूरत है, वो आए। वो दांडियावन कहता है सिकंदर चलो ठीक है, मान लेता है इतनी बात, थोड़ा सा अपना अहंकार कम करता है, नहीं तो झुकने वाला नहीं है वो किसी के सामने। आके कहता है चलो मैं तुमको लेने आया हूँ। वो कहते मैं नहीं आऊँगा। अरे मैं बहुत सम्मान करता हूँ सन्यासियों का, योगियों का, तपस्वियों का, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, अपने राज्य में बहुत बड़ा पद दूंगा। वो कहता है मैं यूनान नहीं जाऊँगा और तुम मुझे अपनी इच्छा के बिना यूनान नहीं ले जा सकते। अब तो सिकंदर को क्रोध आ जाता है, कहता है तुम्हारी ये हिम्मत, पता है तुम किससे बात कर रहे हो सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर से बात कर रहे हो, मैं इतना, मुझे इतना हल्के में मत लो, विश्व विजेता हूं मैं, ईश्वर पुत्र हूं, ईश्वर पुत्र कहता था वो अपने आप को सिकंदर। तो वो दांडयन कहता है तुम जो भी हो, एक सन्यासी को अपनी उसकी मर्जी के खिलाफ तुम नहीं ले जा सकते। ऐसे कैसे नहीं लेके जा सकता, सिपाही हो पकड़ो इसे, बांधो और डालो रथ में। बांधा जाता है और रथ में डाला जाता है, फिर सिकंदर आता है, आप बोलो अब तो जाना ही पड़ेगा ना। वो कहता है तुम मेरे शरीर को ले जा सकते हो परंतु मेरी सन्यस्त चेतना को नहीं ले जा सकते हो। ये सन्यस्त चेतना तुम्हारे यूनान में जाते ही मृत हो जाएगी, फिर तुम मेरे शरीर से क्या करोगे। सिकंदर शांत हो जाता है, छोड़ देता है, जाने दो इसको। सिकंदर सब कुछ लेके गया यहां से परंतु किसी सन्यासी को नहीं ले जा सका। एक सन्यासी ऐसा भी मिला जिसने उसको कहा था कि यहां एक ऐसा सम्राट होगा तुमको भी हरा देगा। चंद्रगुप्त। इतना संयम, इतना कंट्रोल, ऐसे कितने ही योगी तपस्वी हुए जिनके साथ इतना अत्याचार हुए। मंसूर उसके सामने एक एक करके उसको तिल मिलाकर मारा गया। पहले हाथ काटे गए, वो हंस रहा है, दूसरा हाथ काटा, वो हंस रहा है, पैर काटे गए, वो हंस रहा है, आंखें फोड़ दी, हंस रहा है। वो कहता है तुम मेरे शरीर के साथ कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसी तड़पा तड़पा कर मृत्यु दी गई, पर कितने शरीर से ये लोग डिटैच थे, कैसी जीवन भर की इनकी साधना होगी, कितना हाथ को काटा जा रहा है फिर भी वो हंस रहा है, सारे लोग देख रहे, सबके सामने, जैसे जीसस क्राइस्ट को सबके सामने सूली पर चढ़ाए, वैसे मंसूर को भी अनहल हक अनहल हक अनहल हक कहता ही रहा, कहता ही रहा, कहता ही रहा। और वो लोग उसी के समाज के थे कि ये अपने आप को अल्लाह कहता है, पर वो अल्लाह नहीं कह रहा था, उसकी भावना ही कुछ और थी, अनहल हक, आई एम दैट। वो चेतना उस परमात्मा चेतना में जैसे विलीन थी, पर वो कहता रहा कहता रहा कहता रहा, उसको मारते गए मारते गए मारते गए रास तक। कितना संयम है ये अपनी देह पर, मन पर, बुद्धि पर, इमोशंस पर, हर चीज पर। ये है स्वराज्य अधिकारी, ये है स्वराज्य, ये है अपने आप के राजा बनना। तो इसमें हमको 10 चीजों को जीतना है। सबसे पहले आंखें, सबसे पहला काम किस पर करना है? आंखों पर। क्या कहते हैं बाबा ये आंखें? दगाबाज है, बहुत दगा देती है, सबसे ज्यादा धोखा देती है। एक ब्रह्मा कुमार है जिसको बहुत कम दिखता है, इतना ही दिखता होगा बस। वो कहता है कि अच्छा ही हुआ भगवान ने मुझे आंखें कम दी है, नहीं तो बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती थी। अभी टॉप मोस्ट से वधरी है, आंखें बहुत धोखा देती है, डूबती है शरीर में, वस्तुओं में, चीजों में, धन में, हर चीज में जाती है, डूब जाती है। और जहां आंखें जाती है वहां शक्ति बहती है। वेयर द आइस गो एनर्जी फ्लोस। चलते चलते एक पोस्टर दिख गया फिल्म का, आंखें चली गई, एनर्जी चली जाती है वहां पर, खींच लेती है एनर्जी। जहां आंखें जाएगी एनर्जी खींचेगी और चिंतन चालू हो जाता है। इसके लिए सन्यासियों के लिए नियम था डाउन कास्ट आइज, नीचे देखकर चलते थे, बस इतना ही। जरूरत पड़ी तो ऊपर देख लेते थे, परंतु अभ्यास जो करते थे वो था डाउन कास्ट आइज, नीचे। नहीं तो हर जो आ रहा है जा रहा है उसको देखना, इसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है, ये किसके साथ जा रहा है, ये आइसक्रीम खाते खाते चल रहा है, ये कुत्ते को लेकर चल रहा है, इसने ये ड्रेस पहने है, उसने वो ड्रेस पहने हैं, ये अपने परिवार के साथ है, इनका मुंह अभी तक गया नहीं है, ये उसके बहन के साथ घूम रहा है, उस भाई के साथ घूम रहा है, अभी तक भी इनको ज्ञान समझ में नहीं आया। कितने हजारों संकल्प चालू रहते, नकी का राउंड क्या पूरा किया पता नहीं, सारा माल भर के आ गए, गए थे चिंतन के लिए, एकांत और मौन के लिए और प्रकृति के सानिध्य के लिए, पर करके आए मौन पर चिंतन, गुप्त पर चिंतन। इसलिए एक नियम जो है, तो इसमें आज क्या क्या करेंगे, 3-4 चीजें करनी है। सबसे पहला, जो लोग वॉक करते हैं वो टारगेट रखेंगे डाउन कास्ट आइज से वॉक करके, देखो क्या होता है, एक राउंड लगा के देखो क्या होता है। परंतु उसमें जो चलता फिरते लोग हैं उनके चेहरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, आराम से चला जा सकता है और बहुत अच्छे से चला जा सकता है, बिना गिरे, बिना कोई एक्सीडेंट के, कुछ नहीं। ये तो हमारी आदत है, हमारी आंखें देखती रहती है हर चीज को, फाड़ फाड़ के देखती रहती है, इसने क्या पहना, इसका ये कैसा है, उसका वो कैसा है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, पर देखते जरूर है उनको, चिंतन भी नहीं करते, ऐसा कि नहीं उनके लिए कोई आकर्षण है, कुछ नहीं है, देख रहे बस। हाँ तो नहीं होगा फिर, पर वैसा कम होता है, पर वो तो कोई एक संकल्प लेके निकलना पड़ेगा तो होगा फिर। जैसे उस दिन संडे की मुरली में था, मैं कौन, यहां से प्रश्न ले लो और अब चालू करो नक्की का राउंड, 2 राउंड, तो फिर ढेर सारे सामान आएंगे। पर कोई भी संकल्प लेके नहीं निकले, ऐसे ही निकल गए तो फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहला पुरुषार्थ आज का, जब भी वॉक करने जाएंगे तो आंखें नीचे, डाउन कास्ट, जितना हो सके एटलीस्ट 80% आंखें नीचे हो। जो आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कई बार कुछ अर्थ नहीं होता है उसको, क्या करना है, किसी को आने दो, किसी को जाने दो, क्या करना है। दूसरा, बाबा से दृष्टि लेनी है और उसमें से 7 चीजें, जैसे कि ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्तियाँ। कई बार दिन में ये 7 चीज़ें बाबा से लेनी है। तीसरा काम, आँखों से 8 शक्तियाँ बाबा की आँखों से लेनी है, आँखों में आँखें डालना है और 8 पावर्स लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा पुरुषार्थ आँखों का, 21 बार आज टोटल किसी को आत्मा देखना है, पूरा होश के साथ कि ये आत्मा है, ये क्या है, आत्मा है, और इसको मैं शक्तियां दे रहा हूं या कोई गुण दे रहा हूं या प्यूरिटी दे रहा हूं, बस कुछ भी एक चीज दे दो या एक संकल्प, इसका कल्याण हो जाए। हाँ, और उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको पता भी ना चलना पाए, वो चल रहा है, देख रहा है, हम बैठे हैं और देख रहे हैं, ये आत्मा है। ऐसा पावरफुल दृष्टि देनी है पर किसको, पर ये हम चलते फिरते उठते बैठते भोजन कर रहे हैं, सामने कोई है और हमने जस्ट देखा किसी को, उसको शक्ति मिल जाए, उसको पावर मिल जाए, बस इतना संकल्प, बहुत नहीं। पर ऐसा पावरफुल 21 बार, 21 से ज्यादा बार हो गया तो बहुत अच्छा, अर्थात आत्मिक दृष्टि का अभ्यास 21 टाइम्स, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। जैसे योग में बैठे हैं सभी, हम जाके योग में बैठ जाए, एक नजर घुमा के देख लेना है कि ये क्या है, कौन बैठे है, आत्माएं बैठी है, तो ये आंखों का पुरुषार्थ पहला। दूसरा नाक, नोज, इसमें आएगा ब्रेथ, श्वास, जो अभ्यास हम रोज करते हैं, बीच बीच में दोपहर को भी कर रहे हैं, आज फिर करेंगे दोपहर को, या दिन में जब भी समय मिले स्थिर बैठ जाना और केवल फोकस, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। वैसे नाक का संबंध, इंद्रिय का संबंध गंध से है, दुर्गंध सुगंध, इसमें अचल अडोल, तो ये श्वास के द्वारा कर सकते हैं, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आते समय कोई सुख नहीं, जा रही तो कोई दुख नहीं है, डिटैच्ड है इससे, फिर उसी में कभी सुगंध आएगी कभी दुर्गंध आएगी, ना उस सुगंध से अटैचमेंट है ना दुर्गंध से अटैचमेंट है, नहीं तो जैसे ही दुर्गंध होता है तो मुंह कैसे करते हैं, अजीब अजीब करने लगते, वो भी करने की आवश्यकता नहीं, सीधा प्राणायाम कुंभक और निकल जाओ वहां से आराम से। इसलिए उसका भी अभ्यास जरूरी है, क्योंकि दुर्गंध का प्रभाव चेहरे पर ना आए, दुर्गंध का प्रभाव चेहरे पर ना आए, ये योगी की अवस्था है, वो भी स्वराज्य अधिकारी की अवस्था है, स्थिर, किसी दर्द का प्रभाव चेहरे पर ना आना। लोग कसरत करते हैं ना, चेहरा बिगाड़ लेते हैं, क्या क्या करते हैं कसरत करो वो बहुत अच्छी बात है, पर चेहरा नहीं बिगाड़ना है, यही तो पुरुषार्थ होता है उसमें, इसलिए वो प्रैक्टिस बताते ऐसा फूका के करो, चेहरे पे नहीं आने देना, ये बड़ा पुरुषार्थ है एक, नहीं तो करते करते चेहरे पे आता है, वो एक बहुत बड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ है उसका। तो क्या करना, इसमें नाक में नासिकाग्र आ रहा है, श्वास जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसका अभ्यास करना है कई बार बीच बीच में केवल, और इसमें बहुत एकाग्रता चाहिए। देखो 2-3 श्वास के बाद ही बुद्धि भटकना लगती है। चलो अभी करेंगे, बैठे सब स्थिर और केवल श्वास को देखना है, फ्रीज कर दो बॉडी को, ट्रिपल लॉक, हाथ बंद, पैर बंद, आंखें बंद, और केवल श्वास को देखेंगे, आ रहा है जा रहा है, कितना केवल हम श्वास को देख सकते हैं बिना कोई विचार आए, नियंत्रित नहीं करना है श्वास को, जैसा आ रहा है जिस तरह आ रहा है केवल देखना। आ रहा है जा रहा है, शुद्ध श्वास। ओम शांति। अधिक से अधिक समय निर्विचार होने का अभ्यास, केवल देखना बस, और ये देखते देखते एक भाव, मैं साक्षी हूं, और ये अभ्यास कई बार किया जा सकता है, जहां सुगंध दुर्गंध कोई भी अवस्था हो उसमें साक्षी को पुष्ट करना है, शक्तिशाली बनाना है अपने साक्षी भाव को। तो दूसरा होगा, हो गया कान, तीसरा नाक, तीसरा कान, कान को वश में करना। क्या करेंगे इसमें, कान को वश में करना, क्या करना है इसमें? एकाग्रता से सुनने का अभ्यास करना है कोई भी चीज को। क्लास सुन रहे हैं तो ऐसे सुन रहे हैं कि बस ये क्लास ही सब कुछ है, ये आवाज में फोकस कर देना है, इतना अटेंशन से कोई भी चीज सुनना। एक तो ज्ञान की बातें, दूसरा है प्रकृति की आवाज, ग्रीन टाइम, प्रकृति की आवाजों को सुनना। कौन सी आवाजें होती है प्रकृति में? चिड़ियों की, पंछियों की, और कौन सी होती है? झरनों की, हवा की, कलकल निनाद करते झरने, संगीत होता है एक, और हवा की आवाज होती है, और कभी कभी अपने शरीर की एक आवाज होती है, एक शरीर की आवाज होती है अनहद नाद, जब बहुत स्ट्रांग कहेंगे जिसको, या फिर एक साथ तीन चार प्राणायाम जब किए जाते हैं, भस्त्रिका करो, भस्त्रिका के बाद अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये तीन चार प्राणायाम एक साथ करने के बाद उच्चारण, ओम का उच्चारण तीन बार, ये सब करने के बाद में बैठ जाओ और फिर देखो गुंजन होता है, भ्रमरी प्राणायाम, ये सारे जो है ना, ये तीन चार प्राणायाम 15-20 मिनट प्राणायाम करने के बाद जब व्यक्ति बैठता है तो उसको अपने ही अंदर एक आवाज़ सुनाई देती है, एक अनहद नाद, एक गुंजन शरीर में, जैसे कुछ हो रहा है, झंझनाहट होती है, वो भी एक आवाज़ है। तो जब भी प्राणायाम करेंगे तो आवाज़ सुननी है, और वो करना है हर दिन। श्वास के साथ तीन काम करने हैं, एक तो श्वास को देखना, दूसरा स्क्वायर ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, लेना रोकना, छोड़ना रोकना, ये दूसरा, और तीसरा है प्राणायाम। ये तीन चीजें रोज होनी चाहिए। प्राणायाम से स्वास्थ्य ठीक होगा, बॉक्स ब्रीदिंग से भूख कम होगी, और श्वास को देखने से साक्षी भाव पुष्ट होगा। ये तीन काम है श्वास की, खाली केवल श्वास को देखना, आ रहा है जा रहा है, साक्षी स्थिति में स्थित होते जाएंगे। श्वास को जिसने देख लिया वो सुख दुख जीवन में जा रहे उनको भी साक्षी होकर देखेगा। एक जगह जो अभ्यास हो गया वो अभ्यास दूसरी जगह पर अप्लाई करना चालू करेगा। किसी ने निंदा की, किसी ने स्तुति की, वो दोनों ही को साक्षी होकर वो ज्यादा देख सकता है जिसने श्वास को साक्षी होकर, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस यहाँ की वो तुरंत वहां अप्लाई करेगा। जिसने यहां अप्लाई किया वो ठंडी गर्मी को भी सहन करना सीखेगा क्योंकि यहां की प्रैक्टिस है। एक दूसरा प्राणायाम, जितनी श्वास को वश में कर रहा है उतना बहुत सारा अंदर का जो है किचड़ा सब बाहर निकल रहा है। हमारे शरीर में भगवान ने खाने का मार्ग अंदर डालने का एक दिया है, बाहर फेंकने के चार दिए। बहुत होशियारी से ये शरीर की रचना की गई है क्योंकि उसको पता है खाना भले डालने का एक ही मार्ग है पर बाहर फेंकने के चार ऑर्गन्स है, क्योंकि जो कुछ अंदर डाला जा रहा है अंदर टॉक्सिन्स ही बन रहा है। सबसे पहला मार्ग मल द्वार, मूत्र द्वार, लंग्स, फेफड़े और कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा पसीना। इसके लिए ब्राह्मणों के लिए मस्ट है कि 24 घंटे में एक बार पसीना आ जाए, ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए। टप 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 पसीना गिरे, ये सब बाहर निकलेगा। ठंडी के मौसम में तो डबल पसीना आ जाए, ऐसा 24 घंटे में एक बार मनी भाई पसीना आना ही चाहिए। एक बार ऐसी एग्रेसिव एक्सरसाइज एक बार होनी चाहिए। एक दूसरा पसीना, फिर श्वास प्राणायाम, प्राणायाम से अंदर का जो कुछ है वो बाहर निकलेगा। उपवास से कचरा बाहर निकलेगा सारा, एनिमा, बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे आगे की क्लासेस में। तो अभी हम बात कर रहे थे कान की, तो कान से क्या करना है? सुनना है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, रामायण लिखती है कि ऐसे भगत जिनके कान इतने बड़े हैं कि जहां पर भी प्रभु कथा होगी वहां जाके बैठ जाएंगे। श्रवण उनके समुद्र जैसे इतने विशाल है, सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान की जहां कोई बातें हो, कोई भी सुना रहा हो, कैसी भी बातें सुना रहा, जाके बैठ जाएंगे, कितना मजा आता है, आहा हा हा, बहुत अच्छा लगता है ज्ञान की बातें सुनना। एक तो ज्ञान की बातें सुननी है, क्लासेस सुनते, एक क्लास सुननी है हर दिन, जो भी दादियों की क्लासेस है उसमें से एक क्लास कंपलसरी सुननी ही सुननी है। यज्ञ के इतिहास की क्लासेस, यज्ञ का इतिहास भूल ना जाए, क्योंकि भूल गया है, सबको याद ही नहीं है दादियों के अनुभव, क्योंकि अभी उसकी कोई चर्चा नहीं है, अभी कोई और प्रकार की चर्चा है। इसके लिए कंपलसरी एक दादी का अनुभव सुनना ही सुनना है, एक क्लास दादियों की आवाज इस कानों में पड़नी चाहिए। हम बाकियों की क्लासेस नहीं कह रहे, खाली दादियों की कह रहे, क्योंकि हम खुद दादियों के अलावा और कुछ भी नहीं सुनते। यज्ञ के इतिहास की जो क्लासेस है, यज्ञ के इतिहास की क्लासेस, क्या क्या हुआ था तब, वो जीना है, वो उस कालखंड में अपने आप को ले जाना है। टाइम ट्रैवल अंग्रेजी में कहते हैं, टाइम ट्रैवल, पीछे चले जाना, वो क्लास सुनना, प्रकाश मणि दादी की क्लासेस सुनो, गुलजार दादी की क्लासेस सुने, जानकी दादी की क्लासेस और ढेर सारी जो दादी है, उसमें बड़ा मजा आता है। उस आवाज में प्यूरिटी है, उस आवाज में खींच है एक, उस आवाज तुमको इस जगत से उठाकर उस जगत में ले जाएगा जिस जगत में वो दादियां जीती थी। वो अंतर आकाश का हमें अंतर आकाश का वो जो स्पेस में जाता है उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरिक्ष, जगत की यात्रा करने वाला अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष का यात्री, अंतर आकाश के अंतरिक्ष का यात्री बनना है, वो वहां से होगा। तो कानों से क्या क्या करना है, सुनना है। एक तो अपने अंदर की आवाज अनहद नाद जो प्राणायाम के बाद जागता है उसकी हम चर्चा कर रहे थे, ओमकार के बाद जो जागता है, ओमकार करो और फिर रुक जाओ, फिर देखो कैसा गुंजन होता है। एक आवाज, दूसरा आवाज, दूसरा आवाज अव्यक्त बाप दादा की आवाज एक बार सुननी है दिन में, अव्यक्त बाप दादा की आवाज। तीसरा आवाज दादियों के क्लासेस की आवाज। चौथा आवाज परमधाम की आवाज। परमधाम में कौन सी आवाज है, कौन सी निश्शब्द आवाज है, द स्पीचलेस स्पीच, द साउंडलेस साउंड, द गेटलेस गेट, कौन सा है वहां पर, कैसी आवाज आती है, सुनना है कान लगाकर। और फिर सबसे और एक नेचर की आवाज, प्रकृति की आवाज। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे और प्रकृति की आवाज सुनेंगे, साकार बाबा की आवाज, मम्मा की आवाज, अव्यक्त बाप दादा की आवाज, प्रकृति की आवाज, परमधाम की आवाज, अनहद नाद जो शरीर में आ रहा है, ये सब आवाजें हैं। तो सभी एक मिनट के लिए अलर्ट होके फ्रीज कर देंगे अपने आप को। फ्रीज मतलब जम जाना, जैसे बर्फ जम जाता है ना, पूरा जम गए जैसे। और जो आवाज अभी सुनाई देगी उस पर इतना फोकस कर देना कि उसकी एक इतनो सा भी ध्वनि हमसे मिस ना हो। इसमें एकाग्रता का भी अभ्यास है, इतनो सा भी मिस ना हो। स्पर्श, इसका अभ्यास हम रोज कर ही रहे, ऊपर से नीचे तक स्कैनिंग करनी है, कौन से सेंसेशंस इस पर उत्पन्न हो रहे हैं उनको एकाग्रता से देखना है। अगला है जिह्वा, जिह्वा अर्थात जबान। निखिलेश भाई, स्वाद में क्या आता है तो आज का भोजन का पुरुषार्थ फिर से दो बातें, पहला फल, पहला है फ्रूट्स, फ्रूट्स का चिंतन करना है सारे दिन भर, फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स मुझे पसंद क्यों नहीं आते हैं, क्या अच्छे पसंद, कई लोगों को फ्रूट्स पसंद ही नहीं है, फ्रूट्स को तो वो जैसे ऐसे बाजू का ही समझते हैं, जैसे भोजन ही नहीं, अभी भोजन भी जन हो गया, हाँ दे दो थोड़ा, एक टुकड़ा दे दो, एक बस खा लिया, वो समझते हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसके रंग देखो कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स के रंग, उसका स्वाद कितना अच्छा है, कितना नेचुरल स्वाद है, सूर्य ने कितने मेहनत से पकाया इतने महीनों में, कैसे पकता है, इट इज अ सनलाइट ट्रैप्ड है उसमें, सूर्य की किरणें हैं, वो जीवंत है, वो हाई वाइब्रेशनल फूड है, वो सात्विक है, इससे अधिक सात्विक क्या हो सकता है, जिसको किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है, इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना सात्विक, इतना पौष्टिक, इतना रंग भरा, इतना स्वादिष्ट, उसमें कोई मसाले, कोई नमक, कोई तेल नहीं डाला हुआ है जो मनुष्य के निर्माण किए हुए, इतना शुद्ध है वो, ऐसे शुद्ध, उसको जीवंत है, उसमें जीवनी शक्ति है, उसमें हाई वाइब्रेशनल है, उस फलों का चिंतन करना है और खाना भी है दिन भर में, पर महत्वपूर्ण है चिंतन, महत्वपूर्ण है चिंतन, फायदे ढूंढने हैं, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, क्योंकि हमको क्या पता उसमें क्या न्यूट्रिशन है, ये तो मनुष्य के अपने कैलकुलेशन से, वो शायद शरीर में जाके और कुछ नए न्यूट्रिशन बना रहा है, हम कहते हैं सूर्य की किरणें से विटामिन डी मिलता है, क्यों विटामिन बी नहीं मिल सकता, हमको पता नहीं, हमारा विज्ञान कोई संपूर्ण नहीं है, भगवान तो घमंड कहता है वैज्ञानिकों को ये तो जब उनका पूरा ज्ञान मिल जाएगा उनको, तब उनको ढेर सारी और चीजें पता चलेगी, अरे इसमें ये भी है, हम तो सोचते थे यही है, अभी यही है, वैसे भी आम में क्या है, फल एप्पल में क्या है, किसको सही में वास्तव में पता कर सकता है कोई ना, उसमें तो हो सकता है संपूर्ण संपूर्ण पोषक तत्व केवल एप्पल पर पूरा जीवन बीत जाए, इतना सब कुछ है उसमें। तो फलों का क्या करना है आज सारे दिन भर में, चिंतन, एक दान भी करो, दान बाकी चीजों का करो, वो तेल वाली ये रख दो अपने पास व्यक्ति दान फलों का करता है और जो दूसरी जो चीजें है ना वो जमा करके रखता है तेल वाली। तो आज के पुरुषार्थ में सबसे पहला काम क्या करना है, फ्रूट्स को, ये एक पता है 1960 से इस सदी के पिछली सदी की शुरुआत में डॉक्टर शिल्टन, जिसको अध्यात्म का कोई ये नहीं था, पर उसने क्या लिखा है पता है फ्रूट्स के बारे में अपनी किताब में, ट्रेडिशनली हैज इट दैट मैंस ओरिजिनल डाइट वॉज फ्रूट, वाइल वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ द पीरियड वेन मैन लिव्ड ऑन अ फ्रूट डाइट, देर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस टू सब्सटेंशिएट द व्यू दैट ही वंस डिड सो, वी डू नो दैट फ्रूट्स हैव हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैंस डाइट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम रिमोट एरियाज। ये इसने सब कुछ सतयुग का वर्णन लिख दिया है, वो कहता है हो सकता है संभावना है कि कभी एक समय था जब व्यक्ति केवल फलों पर जीता था, ऐसा उसने तब लिख के रखा है, भगवान तो तभी आया ही नहीं था धरती पर, तब लिखा है ये सब उसने। तो आज इसके ऊपर क्या करना है, चिंतन करना है, हम ये नहीं कह रहे बहुत खाओ, चिंतन, ये चिंतन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चिंतन नहीं करते उसके ऊपर, हम चिंतन करते मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतान हूं, इस पर चिंतन ज्यादा करते, फ्रूट पर नहीं करते, एक। और दूसरा अभ्यास आज का, नो वीट, ये केवल आज का अभ्यास है, वीट गेहूं आज के दिन नहीं, गेहूं बाजरा मकई जवार वो सब चलेगा, केवल वीट, आज का पुरुषार्थ है केवल वीट, वीट नहीं, एक दिन के लिए, देखो क्या होता है, शरीर में क्रेविंग तो नहीं होती है कि खाऊं खाऊं खाऊं, खाकरा ये सब वीट में आएगा, ब्रेड ये सब वीट में आएगा, वीट एंड मैदा दो चीजें, इसके साथ मैदा भी जोड़ दो कुछ भी, और वीट के साथ अनाजों के साथ कभी भी शक्कर को जोड़ना इज डेंजरस, डेंजरस, अनाज के साथ शक्कर को जोड़ देना डेंजरस होता है कॉम्बिनेशंस, इसके लिए आज का पुरुषार्थ ये भोजन का। तो ये हो गया जिह्वा, आगे आ जाओ स्वराज्य अधिकारी पर, मुख, मुख में क्या, मुख में मुलारा मुख में क्या हमें मुख में दो तीन तीन चीजें हैं बोलने वाली, बोलने की चीज, पहली चीज गॉसिप्स नहीं फैलाए ना, किसी के साथ क्या हो रहा है, किसने क्या किया, दूसरे किसी को बोलते हुए इंटरप्ट नहीं करना, कोई बोल रहा है उसको उसकी बात पूरी करने दो उसके बाद बोलेंगे, ये है डू नॉट इंटरप्ट एनीबडी। और तीसरा बोलने में क्या, कम से कम बोलना का पुरुषार्थ करेंगे तो कभी नहीं होगा, पुरुषार्थ करना है ज्यादा सुनने का, उसका साइड इफेक्ट आएगा कम बोलना, पुरुषार्थ क्या करना है, मुझे आज सारे दिन भर क्या करना है, सुनना है, क्योंकि आत्माओं को इतना कुछ सुनाना है, हर एक की अपनी अपनी लंबी कहानियां हैं, और चाहते हैं कि सब सुने, तो हम सुन ले, ठीक है। तो सुनने का पुरुषार्थ करना है, हम ये संकल्प करें मुझे कम बोलना है, ये नहीं होता है।
सुनने से दूसरा खुश भी होता
है, और दूसरा खुश भी होता है, उसको लगता है ये कोई है, कोई मेरा भी अपना है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये हो गया सुनना। तो ये कितने हो गए, 7-6 हो गए। क्या बचा है फिर? नहीं नहीं, इंद्रियों में क्या बचा है? नहीं नहीं, ये तो हो गई, कान हो गया, तो कितने हुए?
6 हुए।
उसके बाद में हाथ और पैर, ये दो है। इनका अभ्यास आज हम दोपहर में करेंगे, शिगोंग एंड थाईची, शिगोंग एंड थाईची। इससे क्या करते हैं, हम इस हाथों को अपने वश में लाते हैं। हाथों से क्या करना है, ऊर्जा लेना है प्रकृति से। कैसे कैसे अभ्यास किए जाते हैं उसमें हम देख रहे हैं ना, वो एनर्जी डांस है। वो ऐसे खड़े हैं तो एनर्जी डांस, ऐसे जा रहे हैं एनर्जी डांस, हाथ दुखते हैं उसमें, परंतु ऊर्जा आती है उसमें। तो हाथों को वश में करना। दूसरा है पैरों को वश में करना। हम तो ऐसा बैठते पर आइडियली वो ऐसे होते, आइडियली ऐसे होते, उससे भी ऊपर, वो तो उसमें ज्यादा तनाव आता है। ये हम तो प्रारंभिक अवस्थाओं में है। तो रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, ये चार, ये पांच। मुख, मुख, फिर उसके बाद में हाथ और पैर, इतना ले लेते आज, ठीक है। 9 हो गए शायद। तो ये आज का पुरुषार्थ है, क्या बनने का, स्व के राजा, हे स्वराजे। ये इंद्रिया है, ये हमारे वश में हो, फिर मन बुद्धि संस्कार इनके पीछे पीछे आ जाएगा। और इन्हीं सारे अभ्यासों में बॉडी को स्कैन करना, उसमें मन आ रहा है, मन को हम कह रहे वहां जा वहां जा वहां जा वहां जा, वो बातें सुनेगा। जिसने यहां सुन लिया वो सूक्ष्म भी सुनना चालू करेगा। उसको कहो परम धाम, सीधा परम धाम। उसको कहो सतयुग, सतयुग। जहां हम उसको बोलेंगे धीरे धीरे वो हमारे वश में होते जाएगा। तो आज का दोपहर का, दिन भर का भोजन का पुरुषार्थ क्या रहा? वीट आज के लिए कैंसल। कल कहा जो जितना ज्यादा अनाज लेता है उसमें चार चीजें होती है, नींद ज्यादा आती है, सुस्ती ज्यादा आती है, भारीपन, जड़ता, आलस, नींद आती है। फिर जितना ज्यादा उतनी नींद आती है, और जितना हाई वाइब्रेशनल भोजन अंदर जाएगा उतना ऊर्जा संचारित होती जाएगी शरीर में। नींद तो बहुत दूर, अमृत वेला तो ऐसा भी कभी नहीं होगा, ना आँख कभी बंद होगी। ऐसी अवस्था, ऐसी जागृति, मतलब बस आँख खोल दी कि बस जागृत, सोने का तो सवाल ही नहीं है। नींद तो आती ही है, कि जो जितना शरीर को काम दिया जा रहा है पचाने का, खाने का, पचाने का और फेंकने का, इसी में ऊर्जा जा रही है। जब ऊर्जा इससे मुक्त हो जाती है तो कुछ और क्रिएटिव वर्क में लग जाती है वो। ओम शांति।